الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا بالله. آئیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت سفر کو کہ جس میں ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور بہت کچھ ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورِ قرآن 2025 2025 کا آغاز کریں گے. آج ہم پارہ نمبر ایک کریں گے، اور آج کچھ باتیں ایسی آپ کے سامنے رکھ دوں جو صرف آج ہی نہیں، آپ کو بعد میں بھی فائدہ دیں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کی محبت سچے جذبات کے ساتھ ایسے انداز سے درود شریف پڑھیے کہ آپ کا دل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظ محمد کہنے میں، محمد خاص طور پہ جب لفظ میم آتا ہے نا، شروع میں بھی میم ہے، پھر خا ہے، پھر میم آ رہا ہے، تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں. یہ تجوید جاننے والے جانتے ہیں کہ میم کا مخرج ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. تو آپ اس محبت کو محسوس کیجیے، لفظ محبت اور محمد، سوچیے محمد محبت، اس کو فیل کیجیے، لکھ کے دیکھیں. میم ہا میم دال اور میم ہا با تا، تھوڑی سی ساؤنڈ کا فرق ہے. دل کے جذبوں سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محسوس کیجیے، کیونکہ جب تک آپ کے میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، ہم آپ کے مقام کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے لینا بھی اسی صورت میں ہے، دل کے جذبوں کے ساتھ. تو اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد ولا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دور قرآن 2005 کے پارہ 1 کو شروع کریں گے. بالکل محبت کے جذبوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھرتے ہوئے آپ نے میں نے دور قرآن کو شروع کرنا ہے. اور جب دور قرآن شروع ہوتا ہے تو دل میں سوال بھی ہوتے ہیں، تجسس بھی ہوتا ہے، خیالات بھی ہیں. مجھ سے کئی لوگ خود سے بھی پوچھ رہے تھے، اس سال آپ کیا نیا لا رہے ہیں، اس سال کیا انداز ہوگا، اس سال کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ اس سال کے دورے قرآن کی رکھ دوں. پہلی چیز جو ماشاءاللہ پچھلے کئی دن کے سیشنز کی وجہ سے آپ تک پہنچ چکی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس سال کا ہمارا تھیم سراج منیرہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا چراغ، ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا. تو سب سے پہلی چیز سراج منیرہ. سراج منیرہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ایک تو میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ لوگ زاد الخیر سنیے. ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ساتھی میرے ساتھ آ جائیں، انہوں نے ہمارا پریپ رمضان 2025 کا سیشن نہ کیا ہو، تو ابھی آپ کا تک رمضان میں دن ہے، جب بھی کبھی آپ اس کو سنیں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چراغ کہا گیا، سورج نہیں کہا گیا، سورج بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس پہ بات کر لی اس دن، آپ ضرور سنیے گا. لیکن آج آپ کو جو بتانی ہے بات، وہ کیا ہے کہ لفظ سرجا کیا ہوتا ہے. لکھیے آج کی سراجم منیرہ، سین راج جیم اس کا روٹ ہے، سرجا یس رجا سرجن، بالوں کو گوند کر چوٹی بنانا. اسی طرح سے اسرجا یسرجو اسراجن، بتی اور تیل سے کسی چیز کو روشن کرنا. پہلے دور میں کبھی لالٹن جلائی ہوگی اور اس کے اندر ایک دھاگے کی بتی سی بنائی جاتی تھی، اس کو ذہن میں لائیں. سراجن کہتے ہیں وہ چیز جو روشن کی جائے، یعنی چراغ. سورۃ فرقان کی آیت 61 میں آتا ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے और इसमें आफ्ताब बनाया और मुनव्वर महताब भी बनाया। तो इंशाल्लाह हर दिन के पारे से हम नबी सल्लम को एक हिदायत का ऐसा चिराग लेकर चलेंगे कि आपके तरीकों को अपनाने से हिदायत के चिराग जलते जाएंगे। चिराग से चिराग जलाने हैं। आज का आपका काम क्या है कि इस दौरे कुरान की दावत दीजिए। आप तो मेरे साथ बैठे हैं, बहुत सारे लोग महरूम हैं जो घर से सुन सकते हैं, जो जैसे भी सुने यहाँ ला सकते हैं बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जो ज़िंदगी के एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इससे फ़ायदा उठाएं। तो हम इसमें इंशाल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रुख को भी देखा करेंगे। जहाँ आपसे मुतल्लिक आयात आएंगी हम उससे फ़ायदा उठाया करेंगे। फिर इसी तरह इसमें हम नबी सल्लम के अखलाक के बारे में बात पढ़ेंगे। एवरी डे हम आपके अखलाक से मुतल्लिक जहाँ आयत आएगी वहाँ बात करेंगे, जैसे आज भी हम करेंगे। कहाँ करेंगे ये अब आपने उस वक़्त जब आयत आएगी तो देखना है। सारा कुछ शुरू में बता दूंगी तो आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है? और वहां हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी की बात क्या थी। तीसरी चीज इसमें मोहम्मद अरबी, गवाही वो जो कोई आपके बारे में दे, और कैसे दे, कब दे, क्या हो, इसको याद रखिए। आज मैं आपको मोहम्मद अरबी लिखे, हमारा एक इसमें स्लॉट हुआ करेगा मोहम्मद अरबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, अपनों ने भी पहचाना और बेगानों ने भी पहचाना। मैं आपको नबी सल्लम से मुतल्लिक दो अकवाल बोलने लगी हूँ, आप जो लिख सके लिख ले, जो नहीं लिख सके ना लिखें, लेकिन सुनिए ज़रूर, दिल के कानों से सुनिए। जी आपके मेरे दिल के कान भी होते हैं, मेरी रूह के कान भी होते हैं, लेकिन बात यह है कि नबी सल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़ा दिया। आप वो हैं जिन्होंने अपना ब्रेन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। आपके बारे में टेस्टिमोनियल्स में बहुत सारे लोग हैं जो बीच में हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज मैं आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक तबसरा दूंगी। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पहल जो देखता, इस पर आपकी हैबत तारी हो जाती। आपके करीब जो रहता, इसे आपसे मोहब्बत हो जाती। आपके औसाफ बयान करने वाला कहता कि मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा, ना आपके बाद ना आपसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तबसरा है और मैं पढ़ रही थी और आप सुन रहे थे। तो साथ साथ जैसा हमारे दौरे कुरान में सबसे अहम चीज़ खुद एहतसाबी होती है। सारी दुनिया के एहतसाब तो करते हैं हम, कभी अपना भी तो करके देखें। तो लिहाजा सोचिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, एक एक जुमले में अपने आप को ढूंढिए। कोई मुझे पहली दफ़ा देखे तो मेरी हैबत होती है, ईमान का रोग होता है, आपको पता है। दूर से देखे तो ईमान वाला बड़ा नाकाबिले तस्खीर लगता है, बड़ा डरावना नहीं लगता, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है। फिर जितना आपके करीब आता जाता है उसे आपसे मोहब्बत होती है। अपने आप से पूछिए, जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके घर वाले, आपकी खिदमत गुजार और आपके साथी दो, क्या वो आपसे मोहब्बत करते हैं? फिर आपके औसाफ बयान करने वाला कहता है आप जैसा कोई नहीं, तो क्या कभी मेरे बारे में भी किसी ने ये कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तो हम हो नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब एक और कॉल सुनिए। यही तासुर एक दूसरे अंदाज में उरवा बिन मसूद ने सुलह हुदैबिया के मौके पर बयान किया था। कुफारे मक्का ने पहले बुदैल को, फिर मिक्रस को और फिर हुलैस को, ये नाम थे छोड़ दीजिए, आपके पास नुमाइंदा बनाकर भेजा, लेकिन इन्हें किसी की नुमाइंदगी पसंद नहीं आई। आखिर में उन्होंने उरवा बिन मसूद को भेजा। अब ये कॉल जो सुनाने लगी हूँ ये उरवा बिन मसूद का। उन्होंने वापस आकर कहा, ए कुरैश के लोगों, मैं किसरा के पास इसके दरबारे शाही में जा चुका हूँ, कैसर के पास इसके दरबारे शाही में जा चुका हूँ और निजाशी के पास इसके दरबारे शाही में जा चुका हूँ। अल्लाह की कसम, मैंने किसी भी बादशाह की, किसी कौम के, किसी लीडर की वो शान नहीं देखी जो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके साथियों की, उस उनके दरमियान देखी है। यानी जब मोहम्मद अपने साथियों के बीच में होते हैं ना, तो अल्लाह के नबी को वो कितनी इज्जत दे रहे होते हैं, क्या आपकी शान होती है, ऐसी मैंने किसी की नहीं देखी। सच कहता हूँ, मैंने ऐसी कौम देखी है जो किसी सूरत में इसका साथ नहीं छोड़ सकती। ये जुमला नोट करें, अल्लाह के नबी का साथ जिसने एक दफ़ा दिया ना, फिर सोचा भी नहीं कभी के छोड़ूँ, हालात कैसे भी आए। आप देखिए वहां बदर से लेके तबुक तक के मार के आए, जान के लाले पड़े, हुदैबिया और खंदक, और किसी तरह से इतनी ऊंच नीच आई कि कच्चे ईमान वाले होते तो चले ही जाते, लेकिन अल्लाह के नबी के साथियों ने कभी भी आपको छोड़ने का नहीं सोचा। फितने भी आते हैं, गलतफहमियां भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं, शर भी होते हैं, लेकिन अपने लोग कभी नहीं छोड़ते, बल्कि वो और जम जाते हैं। इसकी गवाहियां मौजूद हैं आपके पास भी और मेरे पास भी। अब तुम सोच लो कि तुमने क्या करना है। अब ये दो शहादतें सुनिए और लिखिए। पहली शहादत एक बालिग नज़र और जान निसार साथी की है, जो कबले नबूवत से लेकर आखिर दम तक सफ़र हो के खजर, यानी सफ़र में हो या आप मौजूद अपनी जगह पे, और खलवत हो के जलवत, यानी लोगों में हो या अकेले हो, हमेशा आपके साथ रहा, जिसका आपसे करीब तरीन रिश्ता था, जिसके बारे में आपने फरमाया था, अंत मिन्नी व अना मिनका, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। ये कौन थे? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु करमुल्लाह वजह। मोहब्बत से उनका तसव्वुर सोचिए। अल्लाह के नबी के पास बहुत छोटी उम्र में आ गए और बाद में फिर आपके दामाद भी बने और खलीफा राशिद भी बने। वो तो आपके बारे में ये कह रहे हैं। दूसरी शहादत सुनिए। दूसरी शहादत एक मर्दम शनास और जहां दीदा दुश्मन की, यानी ऐसा दुश्मन जिसने दुनिया देखी है, जिसे अपनी कौम में मुअज्ज़ज़ तरीन मुकाम हासिल था, कौम के लोग इसे पहलौटी की औलाद से ज्यादा अजीज रखते थे, यानी पहला बच्चा, सबको होता है पहला बच्चा, पहला पोता, पहला नवासा नवासी, बहुत प्यारे होते हैं, यानी उसकी कौम उससे बहुत मोहब्बत करती थी। इसलिए बजा तौर पर अजमत और मोहब्बत की हकीकत से बखूबी आशना था। दोस्त और दुश्मन दोनों इस बात पर शाहिद हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये जुमले सुन लीजिए, एक बार वो दिल आवेज और बेमिसाल शख्सियत के मालिक थे। तीन लफ्ज मैंने बोले हैं, दोहरा दूं, बारो दिल आवेज और बेमिसाल शख्सियत। अगर अल्लाह ने आपको ये दी है ना, तो आप खुशबख्त हैं। अल्लाह के नबियों की पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है, हम कभी एक तरफ झुक जाते हैं, कभी दूसरी तरफ हो जाते हैं। चुनाचे आप जैसा शख्स कभी देखने में नहीं आया। आपको देखकर आदमी पर रोब तारी हो जाता था। फर्शे खाक पर बेसरो सामान साथियों के दरमियान भी आपकी हैबत व अजमत का ये आलम था कि इसके सामने कैसरो किसरा और निजाशी तमाम जाहो जलाल और तुस्को एहतशाम के साथ अपने तख्तो ताज में हेच नजर आते थे। सारी मुश्किल उर्दू का आसान लफ्ज पता क्या है? कि अल्लाह के नबी को ना तो अच्छे कपड़ों की जरूरत थी कि अच्छे कपड़े पहनने तो बाइज्जत लगे, ना उनको कोई अच्छी गाड़ी अच्छा फोन पकड़ना था। आज अमूमन लोग इन चीजों से रोक डालते हैं, किस गाड़ी में आए, क्या सेलफोन पकड़ा हुआ है, कपड़े कितने के, जोड़ा कितने का, और वो दिखावे के लिए जो पहनते हैं वो इसीलिए पहनते हैं कि इज्जत होती भी, फलां जगह जाना है इज्जत होगी। सुभान अल्लाह। आपके अंदर बला की कशिश थी। जो शख्स करीब से देखता आपका गर्विदा हो जाता। आपके साथी दिलो जान से आप पर फिदा रहते थे। अब मैं और आप अपना तकाबुल करते रहे, हमारे करीब वाले हमारे बारे में क्या कहते हैं? तो ये आपको मैंने आज दो लोगों का एहसास दिया, एक आपका अपना और एक दुश्मन, एक अपनों में से और एक गैरों में से। ये सिर्फ दो लोगों का एहसास नहीं है, तारीख की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी के बारे में लोग यही कुछ कहते रहे। 14 सदियां गुजर गई हैं, आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते सुनते वक्त कोई बंदा इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि जो भी थे बाकमाल। तो मोहम्मद अरबी, हम इनके बारे में हर रोज कुछ ना कुछ सुनते पढ़ते जानते रहेंगे, जिससे हमारे दिलों में शौक उभरेगा कि हम अपने प्यारे नबी सल्लम को फॉलो करें। आमतौर पर नबी सल्लम की जुल्फों और आपके गेसुओं का तذکرہ होता है, वो आपके मेरे इख्तियार में नहीं है। आपकी मेरी शक्ल सूरत जो भी है, अल्लाह की देन थी, अल्लाह ने सबसे अच्छी दी अल्हम्दुलिल्लाह, इनकार नहीं है, लेकिन सीरत और आते अपनानी है। तो ये चंद चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। इस दफ़ा का दौरे कुरान हमारा बहुत एनरिच्ड है, तदब्बुर वल अमल, अरबी तफसीर है, और उसका कह लें कि आपको 1 महीने में निचोड़ मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से काम लिए हैं, और जब वो अल्लाह ताला के रस्तों में निकलता है कोई बंदा, तो उसको अल्लाह ताला से खैर मिलती है। आपकी मेरी बातों में क्या रखा है बताइए? कीलो कालत के सिवा तो कुछ भी नहीं है ना। जितना ज़्यादा आप और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कुरान और हदीस के करीब करते रहेंगे ना, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर खैर और आफ़ियत होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने मैंने इंशाल्लाह इस साल मैं आपके सामने आयतों का वो हिस्सा पढ़ा करूँगी जो एक मौजू से मुतल्लिक है, फिर उसमें से हम तीन चीज़ें निकाला करेंगे, कुरानी रहनुमाई, अमल की बातें, और इसी तरह से उसके अंदर हमारे लिए गौर व फिक्र के नुक्ते होंगे। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक को पढ़ने के जो मुख्तलिफ अंदाज हैं वो पाँच हैं। लिखिए, पाँच चीज़ें शुरू से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान और सुन्नत से जुड़े, जिन्होंने कुरान और सुन्नत को समझा, वो हमेशा हर दौर में कुरान से जुड़े रहे। पांच लफ्ज़ कौन से हैं मैं बोल देती हूँ, जिस उनको सुनते ही आप जान देंगे कि ये तो हमें भी पता है। नंबर एक, इसको बगौर सुनना, फिर इसकी तिलावत करना, फिर इसको याद करना जिसको हिफ्ज़ कहते हैं। चौथा नुक्ता होता है कुरान पाक में गौर व फिक्र करना, और पांचवी बात है कुरान पाक पर अमल करना। ये हैं जी वो पांच मरातब जो हर दौर में उम्मत मुस्लिमा के अंदर मुतारिफ रहे। जब तक सहाबा का दौर था, करीब का दौर था, ये पांचों चीज़ें मिलती थी। सहाबा कराम सूरत अल अराफ के आयत 204 पे अमल करते हुए, वइज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून पे अमल करते, तो गौर से सुनते, क्योंकि इससे रहमतों का नज़ूल होता है। आज जब से सोशल मीडिया आम हो गया, तिलावत चलने लग गई घरों में, तिलावत पता ही नहीं, अजान का एहतराम नहीं, तिलावत का एहतराम नहीं है। पहले कुरान की आवाज़ पड़ती थी, सब खामोश हो जाते थे, आज सब बोलते रहते हैं, तिलावतें भी चल रही होती है, जब कोई बंदा मेरे जैसा बोलता है तो चुप होके सुनते हैं। तो आज से नियत कीजिए, हमने जब भी कुरान को सुनना है खामोशी से सुनना है। तिलावत चल रही है चलाइए, कोई बात कर रहा है रोक लीजिए, पॉज दे दीजिए। दूसरा दर्जा कुरान की तिलावत का था, सूरत अल बकरा 121, इसकी दलील के अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहू हक़ तिलावतिही, जिन्हें हमने किताब दी वो इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं। हमने इंशाल्लाह इस साल दौरे कुरान को इसका पूरा हक देना है। तीसरी चीज़, इसको याद करना, सूरह अनकबूत 49, बल हुवा आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, बल्कि ये कुरान तो रोशन आयते हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज है। ये तीन चीज़ें जो अभी तक बोली हैं ये आज भी मारूफ भी हैं और लोग अमल करते हैं, लेकिन दो अगली चीज़ें, नंबर एक गौर व फिक्र करना, सूरह स्वाद के आयत 29 में आता है किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही, ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें। और आखिरी पांचवी चीज़, कुरान पर अमल करना, सूरह ज़ुमर आयत 18 है अल्लज़ीना यस्तमेऊन अल्कौल फ़यत्तबेऊन अहसनहू, जो बात को कान लगाकर सुनते हैं फिर इसमें से जो बेहतरीन बात हो इस पर अमल करते हैं। ये आखिरी दो चीज़ें कम हो गई। आज अफसोस की बात है कि मुसलमानों में इस अजीम किताब को पढ़ने पढ़ाने और याद रखने का खूब अहतमाम है। हिफ्स भी मारूफ है, तजवीद भी मारूफ है, ग्रामर भी मारूफ है, कुरान का तर्जमा भी मारूफ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुरान पाक पर तदब्बुर, इसको तो आज कोई नेकी नहीं समझता, और इस पर अमल तो और भी मुश्किल हो गया। तो लिहाजा इस साल इंशाल्लाह हमारा पूरा थीम तदब्बुर वाला अमल पे होगा, जो सहाबा कराम के उस तरीके पे होगा, उसी मनहज को उसी तरीके को इख्तियार करेंगे कि जो अल्लाह के नबी के बाद आपके सहाबा कराम ने था। ख़ास तौर पे आप पता कि इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, हम में से कोई शख्स जब 10 आयतें सीख लेता था तो इस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता था जब तक उसके मानी को ना जान ले। यानी कुरान पाक को पढ़ते ही जाना मकसूद नहीं है, पढ़ते थे फिर अमल करते थे फिर आगे जाते थे फिर गौर व फिक्र करते कराते आगे से आगे जब पहुंच जाते थे तो फिर उसके ऊपर उनको फ़ायदा होता था, इससे आगे जाते ही नहीं। हमारे आज ख़त्म करने का बहुत शौक है और ख़त्म ही हो गया, ख़त्म ही हो गया। अल्लाह ताला हमारे पर रहम कर दे। तो लिहाजा कुरान पाक को पढ़ने के दौरान इस चीज़ के ऊपर बहुत ही गौर व फिक्र की ज़रूरत है। फिर इसी तरह से याद रखिएगा कि गौर व फिक्र करना और अमल का नुक्ता अपने लिए ले लेना आपको अपनी मेरी फिक्र लगा देगा। रغبت के साथ, तड़प के साथ हम इसको पढ़ेंगे, तो हमारे सलफ सालेहीन इसी तरह पढ़ते थे। ये जो ख़त्म करना है ना, रमज़ान में भी पूरा ख़त्म करना, ये भी कोई बात नहीं है। पूरा दौरे कुरान रमज़ान में ही, ये भी कोई बात नहीं है। जल्दी जल्दी करके भाग के शबीने में 3 सपारे पढ़ लो ताकि 10 रातों में कुरान पूरा, ये भी कोई बात नहीं है। हमारे सलफ सालेहीन और नबी सल्लम के सहाबे कराम ने जो अंदाज इख्तियार किया था, वो गौर व फिक्र और अमल का था। गौर व फिक्र के नतीजे में अमल पैदा होता है। तो लिहाजा इस साल हम गौर व फिक्र की चंद बातें करेंगे, और आप हैरान होंगे कि जब मैंने ऐसी कलेक्ट किया और कुछ देखा, और जो ख़ास तौर पे मैं अरबी तफसीर इसमें यूज़ कर रही हूँ, उसका नाम ही तदब्बु वाला अमल है। आपको आज ही बता रही हूँ, 4228, 4228 लिखाऊंगी आपको इस दौरे कुरान में गौर व फिक्र के। अब बताइए उसमें कितने याद रह जाएंगे तो क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, लंबी बातों की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आयतों पे अमल, छोटी छोटी बातें और कुरान की रहनुमाई हमारे लिए काफ़ी है। तो आइए हम इस अंदाज को लेकर, और साथ ही साथ बीच में आयात की रोशनी में जहाँ नबी सल्लम से मुतल्लिक आयात आएंगी, तो हम उस पे अपने इस साल के इस थीम को, सिराज मुनीरा और उसवे हसना को देखेंगे। तो ये चंद बातें हैं, सिंपल सा दौरे कुरान है आपके मेरे लिए। अपनी फिक्र लग देना, बड़ी बातें ना, बड़े बड़े दावे।